अध्याय 29 विवाह। परमेश्वर ने पुरुष से एक स्त्री की सृष्टि की कि वो उसकी साथिन एवं सहायक हो। वो उसे प्रसन्न करने, प्रोत्साहित करने तथा आशीष देने के लिए सहयोगी हो। पुरुष उसके बदले उसका एक मजबूत सहायक हो। मनुष्य के विवाह का अभिप्राय ये है कि पति पत्नी के हृदय से विशुद्ध प्रेम प्राप्त करे तथा पति पत्नी के चरित्र को विनम्र बनाकर उज्ज्वल बनावे कि वो सिद्धता को प्राप्त करें। इस प्रकार जो भी इस वैवाहिक संबंध में प्रविष्ट होते हैं सो अपने निमित्त परमेश्वर के इस अभिप्राय को पूर्ण करें। मसीह किसी व्यवस्था का नाश करने नहीं आया, पर वो उसकी वास्तविक पवित्रता के स्तर को ऊंचा करके उसका जीर्णोद्धार करने आया। उसके आगमन का यही अभिप्राय था कि मनुष्य में परमेश्वर का नैतिक स्वरूप पुनः स्थापित हो जावे। इसी कारण उसने वैवाहिक संबंध का समर्थन किया। जिसने आदम को हवा के रूप में सहायक दिया, उसने एक विवाह के शुभ अवसर पर एक पहला आश्चर्य कर्म किया। इस उत्सव के मंडप में जहां मित्र तथा कुटुंब साथ साथ आनंद मना रहे थे, मसीह ने प्रकट रूप में जनता के समक्ष अपना सेवा कार्य आरंभ किया। इस प्रकार ये जानते हुए कि ये वो विधि है जिसकी स्थापना उसने स्वयं की है, उसने विवाह का समर्थन किया। उसने ये ठहराया कि पुरुष और स्त्री इस पवित्र बंधन में जुटें। इनके द्वारा ऐसे कुटुंब निर्माण हो जिसका प्रत्येक अंग आदर का मुकुट पहनकर स्वर्गीय कुटुंब का सदस्य होने का ग्रहण किया जावे। विवाह एक साधारण एवं आनंद का अवसर हो। पवित्र प्रेम, जिसका प्रादुर्भाव मसीह से हुआ हो, मानुषिक प्रेम को नाश नहीं करता, वरन उसको अपने में लीन कर लेता है। उसी के कारण मनुष्य के प्रेम का शोधन और पवित्रीकरण होता है, जिससे वो श्रेष्ठ और उत्तम बने। जब तक मनुष्य के प्रेम का समावेश दिव्य प्रेम से ना हो, जिसके फलस्वरूप वो स्वर्ग की ओर बढ़ने के लिए अगुवाई प्राप्त करे, वो अपना बहुमूल्य फल नहीं दे सकता। मसीह की इच्छा है कि विवाह आनंदमय हो, जिससे आनंदमय कुटुंब का निर्माण हो। पवित्र वचन में लिखा है कि काना के इस विवाह में मसीह और उसके शिष्यों को आमंत्रित किया गया। मसीहियों को विवाह के आनंदमय सुअवसरों पर भाग लेने से मसीह ने कभी वर्जित नहीं किया। मसीह ने इस विवाहोत्सव में उपस्थित होकर हमें ये शिक्षा दी कि उसकी ठहराई हुई विधि को मानने के लिए जो आनंदमय मनाते हैं, हम भी उनके साथ सम्मिलित हों। जब मनुष्य ईश्वरीय आदेशानुसार किसी निर्दोष उत्सव में सहभागी हो, तो वो उसे कभी निराश नहीं करता। उसके अनुगामियों को ऐसे जलसों में भाग लेना जिन्हें उसने स्वयं अपनी उपस्थिति द्वारा सम्मानित किया, उचित हैं। इस उत्सव के पश्चात उसने कई और ऐसे जलसों में भाग लेकर उन्हें अपनी उपस्थिति और परामर्श द्वारा पवित्र किया। यद्यपि विवाह पात्र सुयोग्य हों, तो भी इसकी आवश्यकता नहीं कि भारी आडंबर रचा जावे। जब कभी विवाहोत्सवों में आनंद प्रदर्शन के ऊपरी साधनों की प्रचुरता रहती है, तो कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है। नहीं नहीं, स्मरण रखिए कि ये परमेश्वर द्वारा ठहराई हुई विधि है। इस कारण गंभीरता से ये संपन्न हो। जिस कुटुंब का निर्माण पृथ्वी पर होता है, ये स्वर्गीय कुटुंब का एक नमूना हो। सदैव परमेश्वर की महिमा ही को प्रथम स्थान दिया जावे। नवविवाहितों को परामर्श। मेरे प्रिय बभी बहन, आपने एक ऐसी वाचा बांधी है जिसका अंत आपके जीवन के साथ होगा। अब आपका वैवाहिक जीवन संबंधी प्रशिक्षण आरंभ हुआ है। विवाह का प्रथम वर्ष अनुभव का वर्ष है, जिस प्रकार बालक पाठशाला में पाठ सीखता है। पति पत्नी एक दूसरे के स्वभाव से परिचित होते हैं। आपके विवाहित जीवन के प्रथम वर्ष में ऐसी कोई घटना न घटे जिससे आपके भावी जीवन के अध्याय कलंकित हो जावे। वैवाहिक संबंध के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना एक ऐसा कार्य है जिसमें संपूर्ण जीवन व्यय हो जाता है। विवाह करने वाले एक ऐसी पाठशाला में प्रविष्ट होते हैं जिसकी पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होती। मेरे भाई, आपकी पत्नी का समय सामर्थ्य और आनंद आपके साथ जुट गए हैं। उसके ऊपर आपका प्रभाव या तो उसके जीवन के लिए जीवन की सुगंध होगी अथवा उसकी मृत्यु के निमित्त की दुर्गंध। सावधान रहिए, कहीं उसके जीवन का नाश न हो जाए। मेरी बहन, आपको अब अवसर मिला है कि वैवाहिक जीवन के उत्तरदायित्व से संबंधित प्रथम व्यावहारिक पाठ सीखें। सावधान रहिए कि ये पाठ दिन प्रतिदिन विश्वस्तता पूर्वक सीखे जावें। झक्कीपन और असंतुष्टता का कभी अवसर ना दीजिए। सुख और आलस्य जीवन की खोजी न हो। सावधान रहिए कि स्वार्थ आपके जीवन में स्थान न पाले वे। आपके जीवन ऐक्य में आपका परस्पर प्रेम आपके आनंद वृद्धि में सहायक हो। परमेश्वर की आपके लिए यही इच्छा है कि एक दूसरे के जीवन को आनंदमय बनाने के लिए प्रत्येक जनसेवा भाव अपनाएं। यद्यपि आप इस संयोजन से एक अंग बन गए हैं, तो भी स्मरण रहे कि किसी के निज व्यक्तित्व का अपहरण न हो। परमेश्वर आपके व्यक्तित्व का स्वामी है, उसी से आप पूछें कि क्या उचित है अथवा अनुचित है। मुझसे अपनी सृष्टि के अभिप्राय की पूर्ति किस प्रकार हो सकेगी? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरंथियों 6:20। ईश्वर के प्रति आपका प्रेम मानवी प्रेम से बढ़कर होना चाहिए। आपकी प्रेम धारा का प्रवाह उसी की ओर उन्मुख हो जिसने आपके निमित्त जीवित रहकर ही आपकी आत्मा परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रेम दान दे सकती है। क्या आपकी प्रेम धारा का प्रवाह उसी की ओर है जिसने आपके लिए आप प्राण दिया? यदि ऐसा है तो एक दूसरे के प्रति आपका स्नेह ईश्वरीय नियमानुकूल होगा। अपनी पवित्रता एवं सुंदरता में स्फुटित हो, पर जब तक उसकी परीक्षा न हुई हो तो संभव है कि वह छिछला है। प्रत्येक बात में मसीही को प्रथम प्रमुख और अंतिम स्थान पाने दीजिए। निरंतर उसी की ओर ताकते रहिए। ऐसा करने से परीक्षाओं का सामना करने पर आपका प्रेम प्रतिदिन गंभीर और सुदृढ़ होता जाएगा। ज्यों ज्यों उसके प्रति आपका प्रेम गहरा होगा, त्यों त्यों एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम भी दृढ़ होता जाएगा। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कुलुसियों 3:12। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। निम्नलिखित आदेशों का विशेष अध्ययन कीजिए। हे पत्नियों, अपने अपने पैटरों से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहीं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दिया। इफिसियों 5:22-25। विवाह एक जीवन भर का संयोजन है। यह मसीह और कलीसिया के ऐक्य का प्रतीक है। पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति वही भावना प्रदर्शित करना चाहिए जिसका प्रकटीकरण मसीह ने कलीसिया की ओर किया। पति व पत्नी में कोई भी आधिपत्य की आकांक्षा न करें। प्रभु ने एक सिद्धांत स्थापित कर दिया है, प्रत्येक बात में वही पथ प्रदर्शक हो। जैसा प्रभु अपनी मंडली से दुलार करता है, वैसे ही पति अपनी पत्नी से दुलार करें, पत्नी भी अपने पति को आदर के साथ प्रेम करें। इस बात का निश्चय करते हुए कि एक दूसरे का हृदय दुखाया न जावे, दोनों को सदैव दयालुता की भावना में व्यवहार करना चाहिए। मेरे भाई बहन, आप दोनों की इच्छा शक्ति तीव्र है। इस शक्ति को आप अपनी अथवा अपने संपर्क में आने वाले के लिए या तो आप बड़ी आशीष अथवा पाप का कारण बना सकते हैं। एक दूसरे को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बाध्य न करना। ऐसा करते हुए आपका परस्पर प्रेम स्थायी न रह सकेगा। स्वेच्छा पूर्ति की भावना प्रदर्शित करने से कौटुंबिक शांति एवं आनंद का विनाश होगा। अपने वैवाहिक जीवन को कलहपूर्ण न बनने दीजिए। ऐसा करने से आप दोनों आनंद विहीन होंगे। आप अपनी स्वेच्छा का परित्याग करते हुए वचन में विनम्र एवं विनीत रहिए। अपने वचन की चौकसी कीजिए, क्योंकि भलाई अथवा बुराई पर इनका प्रचुर प्रभाव पड़ता है। तीव्रता का आपके स्वर में कोई स्थान प्राप्त न हो। आपके संयोजित जीवन में मसीह स्वरूप सुगंध का समावेश हो। विवाह संबंधी निकटवर्ती ऐक्य में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक जन यह सीख ले कि अपने आप को वश में किस प्रकार किया जाता है अथवा दूसरे से व्यवहार कैसे किया जाता है। मेरे भाई, दयालु, धैर्यवान तथा सहनशील बनिए। स्मरण रखिए कि आपकी पत्नी ने आपको अपना सहायक होने निमित्त अपना पति चुना है, शासन जमाने के लिए नहीं। धृष्ट और सर्वाधिकार शासन करने वाले ना बनिए। अपनी पत्नी से अपनी मर्जी पूरी करवाने में अपनी प्रबल स्वेच्छा बल का प्रयोग न कीजिए। स्मरण रखिए कि उसकी भी अपनी इच्छा है। जिस प्रकार आप अपनी इच्छा पूर्ति चाहते हैं, उसकी भी यही भावना है। ये भी स्मरण रखिए कि आपको विस्तृत अनुभव का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। विचारशील एवं शिष्टाचारी बनिए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। याकूब 3:17। स्मरण रखिए प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर प्रेम है। उसके अनुग्रह से आप एक दूसरे को आनंदित रखने में सफल होंगे, जैसा कि आपने विवाह की प्रतिज्ञा में वचन दिया था। अपने उद्धारकर्ता की सामर्थ्य में आप ज्ञान एवं सामर्थ्य पाकर किसी टेढ़े जीवन को परमेश्वर में सीधा बना सकेंगे। कौन सा काम है जो मसीह नहीं कर सकता? वो प्रेम, धार्मिकता और ज्ञान में सिद्ध है। अपने प्रेम को एक दूसरे पर ही उंडेल कर अपने ही में सीमित ना रखिए। आपके पड़ोसियों पर अपने प्रेम प्रकटीकरण के प्रत्येक अवसर को भी हाथ से न जाने दीजिए। आपके दयालु वचन, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि, किसी के प्रति आभार प्रदर्शन न जाने कितने जीवन संग्राम ग्रस्त संगतिहीनों की प्यास बुझाने के निमित्त एक कटोरा ठंडे पानी का काम देंगे। ढाढ़स दिलाने वाले दो शब्द, दयालुता का एक व्यवहार, किसी बोझ से लादे हुए पथिक के कंधों के असहाय बोझ को उतारकर उसे विश्राम देंगे। स्वार्थरहित सेवा ही में वास्तविक आनंद की प्राप्ति है। प्रत्येक ऐसा काम जो आपने किया है, स्वर्ग में इस प्रकार लिखा जाएगा, मानो वो आपने मसीह के लिए किया हो। तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। मत्ती 25:40। प्रभु के प्रेम रूपी सूर्य के प्रकाश में जीवन बिताइए, तभी आपका प्रभाव संसार के लिए हितकर होगा। आपका जीवन मसीह के आत्मा का वशीभूत हो। आपके अधरों पर सदा दयालुता की व्यवस्था हो। मसीह में नवजीवन का अनुभव करने के निमित्त प्रत्येक नए जन्म पाए हुए के लिए ये आवश्यक है कि उसके वचन एवं कार्य पर सहनशील और परस्वार्थ की छाप हो।